नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। उद्योग मंडल CII के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की। भारतीय उद्योग परिसंघ ने ट्विटर पर लिखा है, CII के अध्यक्ष संजीव बजाज और महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की तथा अर्थव्यवस्था एवं उद्योग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सरकार ने अगले 500 दिनों में 25,000 मोबाइल टावर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। दूरसंचार मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस परियोजना के लिए वित्तीय समर्थन सार्वभौम सेवा दायित्व कोष से किया जाएगा और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क इसका क्रियान्वयन करेगा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को संपन्न राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन में इस परियोजना की घोषणा की। आधिकारिक बयान के मुताबिक दूरसंचार मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए संपर्क सुविधा अहम है और देश के हर एक कोने तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 500 दिनों में 25,000 नए मोबाइल टावर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी गई है। इस सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, दूरसंचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान और 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों ने भी शिरकत की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अनुषंगी RSBVL और अमेरिकी फर्म सैन मिना कॉरपोरेशन ने करीब 3,300 करोड़ रुपए के मूल्यांकन वाला एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का संयुक्त उद्यम स्थापित करने के सौदे को पूरा कर लिया है। दोनों कंपनियों की तरफ से मंगलवार को जारी एक संयुक्त बयान में ये जानकारी दी गई। इसके मुताबिक रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड के पास इस उद्यम की 50.1% हिस्सेदारी होगी, जबकि सैन मिना के पास 49.9% हिस्सेदारी होगी। RSBVL सैन मिना की मौजूदा भारतीय इकाई में 1,670 करोड़ रुपए का निवेश कर ये हिस्सेदारी हासिल करेगी। इस निवेश के बाद सैन मिना की भारतीय इकाई संयुक्त उद्यम में परिवर्तित हो जाएगी और उसमें 20 करोड़ डॉलर से अधिक पूंजी लगाई जाएगी। वित्त वर्ष 2021-22 में RSBVL का राजस्व 1,478 करोड़ रुपए और शुद्ध लाभ 179.8 करोड़ रुपए रहा था। मार्च 2022 के अंत में इसका कुल निवेश 10,857.7 करोड़ रुपए था। दोनों कंपनियों की भागीदारी से बनने वाले संयुक्त उद्यम में रोजमर्रा के कामकाज का प्रबंधन सैन मिना की चेन्नई स्थित प्रबंधन टीम ही करेगी। बयान में कहा गया कि यह उद्यम भारत में एक विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र स्थापित करेगा। ये उद्यम उच्च प्रौद्योगिकी के ढांचागत हार्डवेयर और संचार नेटवर्किंग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रणाली और रक्षा एवं वैमानिकी क्षेत्र पर खास जोर देगा। कोश स्विफ्टी कैप ने 50 करोड़ डॉलर की निवेश योग्य राशि के साथ अपना पहला कोश पेश किया है। स्विफ्टी कैप ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इस कोष से निरंतरता, वृद्धि एवं प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने वाले उद्यमों को वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। इस साल की शुरुआत में गठित स्विफ्टी कैप बुनियादी तौर पर 10 क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। कंपनी के प्रबंध साझेदार पल्लव कुमार सिंह ने कहा कि खासतौर पर स्वच्छता प्रौद्योगिकी, वित्तीय प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, संपत्ति प्रौद्योगिकी, एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, डिजिटल मीडिया, उपभोक्ता प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला में कार्यरत कंपनियों को चिन्हित किया जाएगा। कंपनी के एक अन्य प्रबंध साझेदार मयंक मेहरा ने कहा कि महानगरों से इतर जगहों पर सक्रिय उद्यमियों को वित्त मुहैया कराने वाले कोष की जरूरत बढ़ रही है। घरेलू शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों की भारी लेवाली और डॉलर सूचकांक में गिरावट से अमेरिकी मुद्रा की तुलना में रुपया मंगलवार को 29 पैसे चढ़कर 81.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने रुपये में मजबूती को सीमित कर दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 81.66 प्रति डॉलर पर खुला और कारोबार के दौरान 81.36 के उच्चतम स्तर तक गया और 81.66 के निचले स्तर तक आया। अंत में रुपया अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले 29 पैसे की मजबूती के साथ 81.53 डॉलर पर बंद हुआ। वाहन विनिर्माता किया इंडिया ने मंगलवार को कहा कि वो अपने यूटिलिटी वाहन कारेंस की 44,174 इकाइयों को वापस मंगा रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि एक जिम्मेदार कंपनी होने से उसने इन वाहनों को वापस मंगा कर उनका निरीक्षण करने का फैसला किया है ताकि एयरबैग का संचालन करने वाले सॉफ्टवेयर में कोई खामी पाए जाने पर उसे सही किया जा सके। किया इंडिया ने कहा कि कारेंस मॉडल की इन इकाइयों को स्वैच्छिक रूप से अधिकृत डीलरों के पास मंगाने का अनुरोध वाहन मालिकों से किया जाएगा ताकि एयरबैग के कंट्रोल सॉफ्टवेयर में किसी गड़बड़ी को ठीक किया जा सके। किया ने इस साल फरवरी में 6 और 7 सीटों वाले मॉडल कारेंस को बाजार में पेश किया था। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को अपनी मानक ब्याज दर में लगातार 6ठे महीने वृद्धि की, जिससे ये 9 महीने के उच्च स्तर 2.6% पर पहुंच गई। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने नकदी दर में 0.25% की वृद्धि की, जो विश्लेषकों की उम्मीदों से कम है। विश्लेषकों ने 0.50% वृद्धि की संभावना जताई थी। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई केंद्रीय बैंक पिछले 4 बार से ब्याज दर में 0.5 से 0.5% की वृद्धि करता रहा है। उसके पहले मई में केंद्रीय बैंक ने 0.25% की वृद्धि की थी, जो अगस्त 2013 के बाद की पहली बढ़ोतरी थी। केंद्रीय बैंक के गवर्नर फिलिप लोव ने कहा कि इस बार ब्याज दर में कम वृद्धि करने का ये मतलब है कि नकदी दर सीमित अवधि में खासी बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि आगामी वृद्धि का फैसला मुद्रा स्फीति एवं श्रम बाजार के परिदृश्य के आकलन पर निर्भर करेगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iajansatta.com पर नमस्कार।